जयधवला पुस्तक 14 लेक्चर नंबर 1 ओम नमः सिद्धेश्य ओम नमः सिद्धेश्य ओम नमः सिद्धेश्य ओम शुद्धात्मने नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वैश्यायाणं नमो लोहे सौवसाऊणं उवसमिदसयलदोषे उवसन्तकसाय वीयरायन्ते उवसामणे प्रणम्युम् कसाय उवसामणं यह श्री वीरसेना आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है जिनके कर्ता है गुंदर भट्टार तथा यतिशुभ आचार्य जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 14वें पुस्तक में वही अर्थाधिकार अभी 14वां चल रहा है जो 13वें पुस्तक के अंत में 14 नंबर का अर्थाधिकार चारित्र मुनि की उपशामना नाम का था वो अभी भी यहाँ पर भी चलेगा। आगे यहाँ शुरू करते हैं अभी हम, इसलिए यहाँ मंगलाचरण भी अलग से नहीं, क्योंकि एक एक अर्थाधिकार का मंगलाचरण अलग अलग बोलते हैं, ये वही मंगलाचरण यहाँ भी चलेगा। सूत्र पढ़ते हैं, एतो सुत्त विहासा। अब आगे गाथा सूत्रों का व्याख्यान करते हैं। पहले गाथा सूत्रों को स्पर्श किए बिना गाथा सूत्रों द्वारा सूचित हुए पूरे अर्थ की प्ररूपणा की। पहले हमने गाथा सूत्र पढ़े थे परंतु उसके अर्थ की प्ररूपणा की, गाथा सूत्रों को वहां रेफर नहीं, यानी उसके उसमें जो अर्थ था वो तो बता दिया। अब कहते कि गाथा सूत्रों के द्वारा सूचित हुए पूरे अर्थ की प्ररूपणा की, किंतु यहाँ सर्व प्रथम गाथा सूत्रों के प्रत्येक पद में निहित अर्थ का विशेष व्याख्यान करते हैं, यह उक्त सूत्र का तात्पर्य है।
निहित
यानी उसमें गर्भित, प्रत्येक पद में निहित अर्थ, प्रत्येक पद यानी प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है उसका अर्थ क्या निहित है, उसमें अर्थ क्या गर्भित है, उसमें क्या अर्थ निकलता है समाहित इंक्लूड तम जहां वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। अब इस प्रकार पृष्ठा के विषय हुए अर्थ का क्रम से व्याख्यान करते हुए वहां सर्वप्रथम कषाय विषय उपशामना से संबंधित 8 सूत्र गाथाओं में से प्रथम सूत्र गाथा के पदों के अर्थ का व्याख्यान करने के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं। हमने उसके तो सूत्र पढ़े थे तो उसमें पूछा गया था वो सामना कदि विधाती वो सामना दुविहा करण वो सामना च अकरणो वो सामना च, उपशामना कितने प्रकार की है। तो कहते उपशामना 2 प्रकार की है, करणोपशामना और अकरणोपशामना। उपशामना कितने प्रकार की, इस प्रकार गाथा के इस प्रथम अवयव के अर्थ का व्याख्यान करते हैं इस बात का ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम उक्त अवयव का उच्चारण किया है। गाथा में जो कुछ अवयव है नहीं उसके पार्ट बताए उन्होंने, अलग 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 वाक्य बनाए उसमें से, तो उसके प्रथम अवयव का उच्चारण किया। उदयादि रूप परिणामों के बिना कर्मों का उपशांत भाव से अवस्थित रहना, इसका नाम उपशामना है। क्या कहा, उदय नहीं होना
तो
सत्ता में पड़े रहे, यानी उदय आदि में उदीर्ण भी ले लेना, उदयादि रूप परिणामों के बिना कर्मों का उपशांत भाव से अवस्थित रहना, उसका नाम है उपशमना। विशेषण चारित्र मुनि की उपशमना प्रकरण में जो 8 गाथाएं आई है उनमें से प्रथम गाथा का प्रथम पाद कहो या चरण कहो, जैसे 4 चरणों में एक गाथा हो जाती है, तो उसमें उपशमना कदिविधा, उपशमना कितने प्रकार की है, ऐसा वहां लिखा था। वृत्तिकार आचार्य यति वृषभ, वृत्तिकार यानी वृत्ति करने वाला, ये वृत्ति बनाई उन्होंने, उसके ऊपर सूत्र बनाए, टीका बनाई है, ये चूर्ण सूत्र लिखे उन्होंने। वृत्तिकार आचार्य ऋषि वृषभ इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि उपशमना 2 प्रकार की है, कर्णोपशमना और अकर्णोपशमना। उनमें से सर्वप्रथम उपशमना पद की व्याख्या करते हुए यहाँ जयधवला टीका में बतलाया है कि उदयादि परिणामों के बिना कर्मों का उपशांत भाव से अवस्थित रहना, इसका नाम उपशमना है। यहाँ उदयादि परिणामों के बिना इसका आशय है किसी कर्म का बंद होने पर विवक्षित काल तक उदयादि के बिना तदवस्थ रहना, इसका नाम उपशमना है। तदवस्थ ने जैसा है वैसा रहना, उसका यानी उदय नहीं होना, यह उपशमना का सामान्य लक्षण है जो यथासंभव कर्णोपशमना और अकर्णोपशमना दोनों में घटित होता है। लक्षण क्या बताया है?
उदयादि
परिणामों के बिना कर्मों का तदवस्थ रहना, उपशांत भाव से रहना, उसको कहेंगे उपशमना। अब ये उपशमना 2 प्रकार की है। हाँ, पर उदीर्णा के द्वारा भी उसका उदय तो शुरू ही होता है, परंतु कुछ सभी कर्मों का होगा कि एक निषेक का होगा?
कोई कोई कर्म का उपशमना
एक ही निषेक का होगा ना, बाकी निषेक क्या सत्ता में पड़े रहेगी कि नहीं? वहाँ तो उसके उपशमना है ही है, परंतु जो एक निषेक उदय रूप होगा उस समय बाकी का क्या हो रहा है? नहीं, अभी देखेंगे ना, अभी तो शुरू हुआ है विषय, वो समझाएंगे। मैं विचार जरूर करना। हाँ, तो अभी वो बताएंगे, क्योंकि यहाँ से तो शुरू है सब्जेक्ट। वो 2 प्रकार की है, कर्णोपशमना और अकर्णोपशमना। उनमें से प्रशस्त और अप्रशस्त परिणामों के द्वारा कर्म प्रदेशों का उपशम भाव से संपादित होना कर्णोपशमना है। परिणामों के द्वारा होते हैं इसलिए कर्णोपशमना, करण है परिणाम। अथवा दूसरा अर्थ, कर्णों की उपशमना का नाम कर्णोपशमना। कर्णों की उपशमना जैसे हम 10 कर्म के थे, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्ण, संक्रमण वगैरह वगैरह, तो विशिष्ट करण नहीं होना उसको भी कर्णोपशमना कहेंगे। अथवा कर्णों की उपशमना करण का नाम कर्णोपशमना है। 2 प्रकार से उसकी परिभाषा बताएंगे।
कभी
एक तो परिणामों, अभी पूरा पढ़ेंगे। एक तो परिणामों के कारण कर्म प्रदेशों का उपशम भाव से रहना, उसको कर्णोपशमना कहेंगे। या कर्णों की उपशमना, कुछ करण है वो करण नहीं होना, पहले हो रहे थे उसका नहीं होना, उसको कहेंगे कर्णोपशमना। उपशमना, निधत्त और निकाचना आदि 8 करणों का प्रशस्त उपशामना द्वारा उपशम होना कर्णोपशामना है। हमने देखा है वो निदत्ति निकाचना और उपशामना ये आठवें गुण स्थान तक है, बाद में वो नहीं रहता, इन्हें सभी में वो शुरू हो जाता है, निदत्ति निकाचनपना छूट जाता है और सभी कर्मों का सभी परमाणुओं का अपकर्षण आदि शुरू हो जाता है। तो निदत्ति निकाचित कर्णों की विच्छित्ति कहते हैं, उसी को यहाँ कर्णों के उपशामना कहा, वो कर्ण यहाँ नहीं होंगे। निदत्ति निकाचना हमने कहे उस कर्णों की विच्छित्ति होती है, इन जब जब जहाँ जिसको लगता है उसको यहाँ जहाँ जो है योग्य उसको वहाँ समझना, उन कर्णों का उपशम होना, कर्ण नहीं होना अथवा अपकर्षण आदि कर्णों का अप्रशस्त उपशामना द्वारा उपशम होना कर्णोपशामना है। जिसको अप्रशस्त उपशामना कहे उदय नहीं आना, अन्य रूप से जो कुछ होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य। अभी ये तो समझाएंगे डिटेल्स। इससे भिन्न लक्षण वाली अकर्णोपशामना है, यानी प्रशस्त और अप्रशस्त परिणामों के बिना, पहले प्रशस्त और अप्रशस्त कर्म परिणामों के द्वारा बताया था, यानी वहाँ परिणामों से रिलेटेड थे, या दूसरी परिभाषा कर्णों की बात की, वो कर्ण होना या कर्ण रुक जाना, उसको कर्णों की उपशामना कही। अब कहते हैं प्रशस्त अप्रशस्त परिणामों के बिना जिन कर्म प्रदेशों का उदय काल प्राप्त नहीं हुआ है, उनका उदय रूप परिणाम के बिना अवस्थित रहना अकर्णोपशामना है, यह उक्त कथन का तात्पर्य। यानी यहाँ जीवों के परिणाम से कुछ नहीं लेना देना, उनका अभी उदय काल नहीं आया है, वो पड़े रहेंगे सत्ता में, तो उसको भी अकर्णोपशामना कहेंगे, यानी उसको भी उपशामना कहेंगे। एक का नाम है करण और एक का नाम अकरण विशेषार्थ। यहाँ कर्णोपशामना और अकर्णोपशामना इन दोनों के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। विशेष वहाँ पो आगे स्वयं टीकाकार चूर्णी सूत्रों को ध्यान में रखकर करने वाले है, यानी अभी थोड़ी हम शांति रखेंगे तो हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा उपशामना के दो भेदों का प्रतिपादन कर अब यहाँ अकर्णोपशामना अल्प वर्णन के योग्य होने से पहले वह कथन करने के योग्य है, इसलिए उसका कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। जो थोड़े में पड़ जाए उसको पहले निपटा लेते हैं, है ना? उसका वर्णन अल्प है, इसका अर्थ दूसरे का अधिक होगा, उसका बाद में करेंगे, तो ये अकर्णोपशामना को पहले बता रहे हैं। जहाँ सा अकर्णोपशामना इससे इमे दुवे नाम धेयानी अकर्णोव सामना तीवी अनुदिनोव सामना तीवी। वह जो अकर्णोपशामना है उसके ये दो नाम है, दो भेद है, नहीं का नाम है दो, कौन से? एक तो बता ही दिया था अकर्णोपशामना, उसी का दूसरा नाम क्या है? अनुदीर्ण उपशामना। अनुदीर्णोपशामना अनुदीर्ण यानी उदीर्ण नहीं होना, अनुदीर्ण उपशामना। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, वह जैसे द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को निमित्त कर कर्मों के विपाक रूप परिणाम का नाम उदय है। यह अलग परिभाषा है ना, हम तो स्थिति उदय पूरी होने पर कहते हैं, तो यहाँ तो कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का निमित्त कर कर्मों के विपाक रूप परिणाम का नाम उदय। ये बात पहले भी आ चुकी है एक बार, जैसे क्षेत्र का निमित्त कर किसका उदय होता है? तो अनुपूर्वी का उदय होगा। भाव के निमित्त से जो उदीरित होने वाले हैं जीव के परिणाम के निमित्त से, वो पहले ये बात आ चुकी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के परिणाम से विपाक रूप परिणाम को उदय कहते हैं। उस उदय से परिणत कर्म को उदीर्ण कहते हैं। यानी हम जो उदीर्णा वाला उदय, वो उसकी बात नहीं है, उदय होने को उदीर्ण, ये कर्म उदीर्ण हुआ, उदय से परिणत कर्म को उदीर्ण कहते हैं। उदीर्ण वो तो विशेषण बना है ना उसके, उदय रूप हुए ने उदीर्ण हुआ, उससे भिन्न जिसने विपाक परिणाम को प्राप्त नहीं किया है उसे अनुदीर्ण कहते, यानी जिसका उदय नहीं उसको अनुदीर्ण कहेंगे, जिसका उदय है उस उदय से परिणत कर्म को उदीर्ण हुआ कहेंगे, और जो उदय रूप नहीं हुआ है उसको अनुदीर्ण कहेंगे। अनुदीर्ण कर्म की उपशामना, हाँ क्या हुआ, कहा कि वो अनुदोर्ण जैसा दिख रहा है लास्ट, तो जी कर देना भी उसको। अनुदीर्ण कर्म की उपशामना अनुदीर्ण उपशामना कहलाती है, यानी जो उदय में नहीं आ रहा है, उदय रूप नहीं परिणत हुआ है, तो उसको वैसे ही रखना, उसकी उपशामना उसको अनुदीर्ण उपशामना कहते हैं। करण परिणामों से निरपेक्ष होकर जो अनुदीर्ण अवस्था होती है वही अनुदीर्ण उपशामना है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी परिणामों के कारण इसमें कोई
बदलाव नहीं होता,
हाँ बदलाव नहीं होता है, तो उससे वह निरपेक्ष है, इसलिए उसको अनुदीर्ण कहा। इसी को अकरणोपशामना भी कहते हैं, क्योंकि यह उदीर्णा करण परिणामों से निरपेक्ष होती है। इस प्रकार यह अकरणोपशामना की संक्षिप्त प्ररूपणा है, उसका विस्तार से कथन अन्यत्र देखना चाहिए। अधिकारवश यहाँ उसका कथन करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। ऐसा कम्म पवादे, यह कर्म प्रवाद पूर्व में प्ररूपित है। कर्म प्रवाद आठवें पूर्व का नाम है। कर्म प्रवाद पूर्व आपको याद होगा शायद, सातवें का नाम आत्म प्रवाद पूर्व, फिर कर्म प्रवाद पूर्व, फिर वो तो प्रत्याख्यान पूर्व, जो हाँ अलग अलग पूर्वों के नाम है ना, जहाँ मूल और उत्तर प्रकृति भेदों को प्राप्त सभी कर्मों के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को निमित्त कर अनेक प्रकार के विपाक परिणाम और अविपाक परिणाम का वर्णन किया है। यानी ये सब किसके निमित्त से उदय रूप यानी विपाक रूप और अविपाक रूप, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को निमित्त कर,
ये भाव जो है वो कर्म में नहीं जाएगा ना, कर्म
करण यानी वो कौन से करण,
जो कर्णोपशामना है,
हाँ वो जब कर्णोपशामना की बात आएगी ना, हाँ, तो अभी हम उसकी साथ कंपेयर करेंगे। वहाँ प्रशस्त अप्रशस्त परिणामों की बात की,
तो ये जीव के परिणामों के भाव है कि पुद्गल के परिणामों के भाव है, परिणाम
पुद्गल के कैसे हो, ये बात पहले हो चुकी है हमारी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आप देख लेना जरा, 13वें में या 12वें पुस्तक में कहीं होनी चाहिए, मुझे पक्का याद है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त कर कर्मों का उदय होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात हमने वहां पर भी की थी, देखो यहाँ कुछ आगे आती है, तो विपाक परिणाम और अविपाक परिणाम का वर्णन किया है। वहाँ इस अकरणोपशामना के स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ इसकी प्रबंध रूप से प्ररूपणा उपलब्ध होती है। अब ये कर्म प्रवाद का वर्णन कैसे है?
कर्म प्रवाद
महाबंध में है क्या? क्योंकि पढ़ना चाहिए, नहीं अवेलेबल है तभी तो कहेंगे ना पढ़ना चाहिए। उस समय होगा वीरसेन स्वामी के काल में, वीरसेन स्वामी ने लिखा है ये, वहाँ पढ़ वहाँ इस अकरणोपशामना के स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ ये बताया हमने। इस प्रकार अकरणोपशामना के अर्थ का कथन करके अब करणोपशामना का कथन करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते। उन्होंने बताया ना ये अल्प होने से उसको पहले बता देते और यहाँ विस्तार से करणोपशामना की बात चलेगी। जा सा करणो व सामना सा दुविहा, देश करणो व सामना तीवी, सव करणों व सामना तीवी। जो वह करणोपशामना है वह दो प्रकार की है, देश करणोपशामना और सर्व करणोपशामना। जो यह पहले कही गई करणोपशामना है वह देश करणोपशामना और सर्व करणोपशामना के भेद से दो प्रकार की है। उनमें से अप्रशस्त उपशामना आदि करणों के द्वारा एक देश कर्म परमाणुओं का उदयादि परिणाम के परमुखी भाव से उपशांत भाव को प्राप्त होना देश करणोपशामना है। क्या कहा? अप्रशस्त उपशामना होती है उसमें क्या होता है आदि लेकर दूसरे भी एक देश कर्म परमाणुओं का, यानी कुछ कर्म परमाणुओं का उदयादि परिणाम के परमुखी भाव से उपशांत भाव को प्राप्त होना, यानी उनका जो उदयादि परिणाम है वो कैसे है? परमुखी भाव से उदय हो रहा है,
स्वरूप से उदय नहीं आ
रहा है, अपने रूप से उदय में नहीं आना, पररूप से आना। इसी को क्या कहेंगे? देश करणोपशामना, क्योंकि कुछ परमाणु की बात है यहाँ पर। पार्षद तो कहते इसका देश करणोपशामना नाम क्यों है? क्योंकि वहाँ किन्हीं करणों के परिमित कर्म प्रदेशों में ही उपशांतपना देखा जाता है। इन्हीं करणों के कर्मों के कर्मों की चाहिए
कर्मों की
कहाँ ऊपर क्या? नहीं नहीं तथा केसिंच देव करणानं परिमीयेषु चैव। परिमीयेषु परिमित परिमित कर्म प्रदेश किन्हीं कर्मों के करणों के परिमित कर्म प्रदेशों में ही उपशांतपना देखा जाता है, यानी किन्हीं करणों में कुछ करण ही उपशमित रहते हैं। करणों के शब्द लगाए पहले कुछ बताए कि उसके पर ही मैं देख रही हूँ। हाँ किन्हीं कर्णों का परिमित कर्म प्रदेशों में ही उपशांतपना होता है, यानी सभी कर्णों का नहीं, किन्हीं कर्णों का बराबर किन्हीं कर्णों के परिमित प्रदेशों में ही उपशांतपना देखा है। के यानी का, हिंदी भाषा है वो, हम कहेंगे किन्हीं कर्णों का उपशांतपना देखा जाए, और वो भी सभी कर्मों में नहीं, कुछ कर्म प्रदेश
करणों का उपचार करना नहीं,
जैसे उदय नाम का जो करण है वो नहीं है, परमुख से उदय हो रहा है, तो किन्हीं कर्म परमाणुओं का ऐसे सभी प्रस्तावना ले लो। फिर से हम उसको देखेंगे, प्रस्तावना शुरू से पांच नंबर लिखा है नया। कषाय प्रावृत जयधवला का यह चौदहवा भाग है, चारित्रम उपशमना का प्रकरण है, वो तो तेरहवे से शुरू हुआ था। उपशम श्रेणी पर आरोहण का कथन भाग तेरहवे में कराए हैं। प्रकृत में उपशम श्रेणी से अवरोहण का विवेचन क्रम प्राप्त है, उसमें भी सर्वप्रथम उपशम श्रेणी की अपेक्षा कषाय प्रावृत में जो आठ सूत्र गाथाएं निबद्ध है उनको लक्ष्य में रखकर एत्तो सुत्त विहासय चूर्ण सूत्र निबद्ध किया है। उन सूत्र गाथाओं को तो चारित्र मुनि उपशामना अनुयोग द्वार के प्रारंभ में ही निबद्ध कर आए हैं, अतः यहाँ उनके पदों का निर्देश न करके उनमें जिस विषय का प्रतिपादन किया है उसी का स्पष्टीकरण प्रकृत में प्रस्तुत करेंगे। गाथाएं तो हमने विस्तार से वहां पढ़ी। उपशामनाकरण और उसके भेद, कर्मों के उदयादि परिणामों के बिना उपशांत भाव से अवस्थित रहना, इसका नाम उपशामना है। इसके दो भेद जो अभी हम पढ़ चुके वही बात यहाँ फिर से दोबारा हम देख रहे हैं कि इसके दो भेद हैं, कर्णोपशामना और अकर्णोपशामना। कर्णोपशामना का बताते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त परिणामों से कर्म प्रदेशों का उपशांत रहना कर्णोपशामना है, अथवा कर्णों की उपशामना को कर्णोपशामना कहते हैं। दो प्रकार से बताए, उपशामना निधत्तीकरण और निकाचनाकरण। उपशामनाकरण ये करण है ना, उपशामनाकरण निधत्तीकरण और निकाचनाकरण आदि आठ कर्णों की प्रशस्त उपशामना द्वारा उपशामना होना कर्णोपशामना है, अथवा अपकर्षण आदि कर्णों की अप्रशस्त उपशामना द्वारा उपशामना होना कर्णोपशामना है, यानी अपकर्षण नहीं होना उसको भी कर्णोपशामना। यह उक्त कथन का तात्पर्य है।
तो यहाँ पे अप्रशस्त उपशामना हम लोग जो बताते हैं वो भाव का उदय नहीं होना, वो अपेक्षा से बता रहे हैं।
जैसे सम्यक तो प्राप्त हुआ, अनंतानुबंधी की अप्रशस्त उपशामना है।
अनंतानुबंधी के जो परिणाम है इसे परिणाम नहीं हो रहा है, उसको उपशामना कहा?
नहीं, उन करणों की बात नहीं। उदय ये भी एक करण है ना, अपकर्षण होकर या उदीर
नहीं, ये कर्णों की उपशामना जो बताया था वो कर्णों की उपशामना,
कर्मों की अवस्था को करण के
नहीं, कर्मों नहीं, आगे क्या बताया जो प्रशस्त और अप्रशस्त भाव है उसको करण कहते हैं।
वो तो उसका निमित्त चलेगा, करण जो है वो कर्मों की अवस्थाएं हैं। जैसे संक्रमण होना ये करण है, उपशम होना ये करण है, अपकर्षण होना ये करण है, उत्कर्षण होना ये करण है, उन करणों की बात है, कर्मों की अवस्था की बात है। ये उपशामना वगैरह किस में हो रही है? कर्मों में तो हो रही है। ये सारा जो हम देख रहे हैं चारित्रमों की उपशामना का अर्थ क्या है? भावों में नहीं लगा रहे, कर्मों में लगा रहे, ये भी कर्मों की बात चल रही है। अब आगे पढ़ेंगे अकर्णोपशामना, ये र रह गया यहाँ पर, अकर्णो हुए ना, अकर्णो र डालना भी, अकर्णोपशामना और उसके भेद। यहाँ कर्णोपशामना का जो लक्षण निर्दिष्ट किया गया है इससे अतिरिक्त लक्षण वाली अकर्णोपशामना होती है, यानी वहाँ क्या लक्षण बताया था? प्रशस्त अप्रशस्त परिणामों से, यहाँ कहेंगे प्रशस्त और अप्रशस्त करण परिणामों के बिना। यहाँ करण शब्द क्यों डालना पता नहीं है, यानी अप्रशस्त परिणामों के बिना जिनका उदय काल अभी प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे कर्म परमाणुओं का उदय के परिणाम के बिना अवस्थित रहना, उदय परिणाम के बिना अवस्थित रहना अकर्णोपशमना है। अभी उसका उदय काल आया ही नहीं है, ऊपर पड़े है, तो उसको अप्रशस्तोपशमना है, सॉरी अकर्णोपशमना कहेंगे। मलय गिरि ने श्वेतांबर कर्म प्रकृति में इसका लक्षण का निर्देश करते हुए लिखा है कि संसारी जीवन के जैसे पर्वत और नदी के पत्थर चतुष्कोण और त्रिकोण परिणाम कर अवस्थित रहते हैं, वैसे ही अधप्रवृत्तकरण आदि करण परिणामों के बिना, करण परिणामों के बिना यानी वो अधप्रवृत्तकरण वगैरह परिणामों के बिना वेदना के अनुभवन आदि कारणों से कर्म प्रदेशों का उपशांत होना अकर्णोपशमना है। प्रकृत में हम अपनी बात देखेंगे, वीरसेन स्वामी ने अकर्णोपशमना का जो लक्षण प्रतिपादित किया है उसमें बाह्य किसी कारण का निर्देश नहीं किया, जबकि श्वेतांबर कर्म प्रकृति में मलयगिरि अकर्णोपशमना में वेदनादि के अनुभव को कारण रूप से प्रस्तुत करते हैं। मलयगिरि के अनुसार यह एक करणकृत और दूसरी अकरणकृत दोनों प्रकार की देशोपशमना में ही देखनी चाहिए, सर्वोपशमना में नहीं, क्योंकि कर्णों से ही उसकी उत्पत्ति होती है। सर्वोपशमना जो हम कहेंगे यानी चारित्र मुनि की सर्वोपशमना होती है, वहाँ बाह्य किसी निमित्त की बात नहीं है, अदब पर्वत अनिवृत्तिकरण वगैरह करण परिणामों के द्वारा होती है। परंतु यह कथन कषाय प्रावृत्त की चूर्णी और उसकी टीका दोनों के विरुद्ध है। ये बात यहाँ क्यों लिखी पता नहीं। अकर्णोपशमना के दो भेद हैं, अकर्णोपशमना और अनुदीर्ण उपशमना। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आलंबन लेकर कर्मों का जो विपाक परिणाम होता है उसे उदय कहते हैं, तथा उस उदय से परिणत कर्म को उदीर्ण कहते हैं। उसके बिना जिसने विपाक परिणाम प्राप्त नहीं किया है उसे अनुदीर्ण कहते हैं। इन अनुदीर्ण कर्मों की उपशमना का नाम अनुदीर्ण उपशमना है। यह करण परिणामों के बिना होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम अकर्णोपशमना भी है। यानी जो हमने देखा ना, जो करण परिणामों से अभी दर्शन मुनि की और चारित्र मुनि की उपशमना होती है, तो करण परिणामों से होती है तो उसको कर्ण उपशमना कहें। और जहाँ करण उपशमना का कोई काम नहीं है, अभी उदय का नहीं आया तो सत्ता में पड़े हैं, इसका विवेचन कर्म प्रवाद नामक आठवें पूर्व में दृष्टव्य है। श्वेतांबर कर्म प्रकृति मूल में तो इस संबंध में इतना ही कहा गया है, इसके जानकार अनुयोग धरों को हम प्रणाम करते हैं, किंतु इसकी चूर्णी में यह अवश्य ही स्वीकार किया गया है कि अकर्णोपशमना का विवेचन करने वाला आगम विच्छिन्न हो जाने से ही ग्रंथकार ने इसके जानकार अनुयोग धरों को प्रणाम किया है। उनकी बात है श्वेतांबरों। अब कर्णोपशमना और उसके भेद। कर्णो हुआ है, करणों र अलग चाहिए, कर्ण हुआ है, करणों अलग अलग चाहिए। कर्णोपशमना के दो भेद हैं, देश कर्णोपशमना और सर्व कर्णोपशमना। अप्रशस्त उपशमना आदि कर्णों के द्वारा एक देश कर्म प्रदेशों का उदयादि परिणाम के बिना उपशांत रूप से रहना देश कर्णोपशमना है। वो शाह को डबल चानना मात्रा हो गई, एक मात्रा एक्स्ट्रा हो गई। छह पृष्ठ पर पढ़ रहे थे हम कर्णोपशमना और उसके भेद। इसमें कर्णो लिखा है पहली लाइन में, उसको करणो लिखना, और तीसरी लाइन में देश कर्णों को शामना, चा को एक मात्रा एक्स्ट्रा हो गई है। मराठी हम काना कहते, काना और मात्रा, गुजराती में क्या
काना मात्रा,
हिंदी में सबके लिए मात्रा कहते, वहाँ काना नहीं कहते, मात्रा ही कहते। हम तो ए आई ऐसा जो ऊपर लिखेंगे उसको मात्रा कहते, और वाला काना वैसे हिंदी में नहीं, उसको भी मात्रा कहते, उसको भी मात्रा कहते। चूर्णी सूत्रकार ने उसकी चूर्णी में उसकी भी चूर्णी होगी ना, चिदंबरम की चूर्णी होगी, कोई पता नहीं किसके लिए इसकी चूर्णी लिखी, मलयगिरी की उनकी भी चूर्णी वो लिखने वाले कोई होंगे ना, यानी उसकी टीका करने वालों ने ऐसा लिखा है कि हाँ अनियोग विच्छिन्न हो गए इसलिए उनको नमस्कार करके छोड़ दिया। अब यहाँ हम नीचे का पढ़ रहे थे, यानी दो भेद है, रेश कर्ण उपशमना सर्व कर्ण उपशमना, अप्रशस्त उपशमना आदि कर्णों के द्वारा एक देश कर्म प्रदेशों का उदयादि परिणाम के बिना उपशांत रूप से रहना देश कर्णोपशमना है। इसमें किन्हीं कर्णों का परिमित कर्म प्रदेशों में ही उपशांत पना होता है, इसलिए इसे देश कर्णोपशमना कहते हैं। यानी वहाँ किन्हीं कर्णों के यानी अप्रशस्त उपशमना वगैरह की बात है ना, कोई कोई कर्ण उसमें लागे होंगे, वो भी कुछ परमाणु में होगा, किंतु इस विषय में अन्य व्याख्यानाकरण का यह अभिप्राय है। यहाँ इस प्रकार के देश कर्णोपशमना विवक्षित नहीं है, क्योंकि इसका अकर्णोपशमना में समावेश हो जाता है, इसलिए यहाँ देश कर्णोपशमना का दूसरा अभिप्राय है। यथा दर्शन मुख की उपशमना होने पर कितने ही कर्ण उपशांत रहते, यानी कर्ण नहीं होते, और कितने ही कर्ण अनुपशांत रहते हैं, यह देश कर्णोपशमना है। यानी सभी कर्ण नहीं होना, कुछ कर्ण उपशमित रहना, उसको यहाँ कर्णोपशमना कहा, देश कर्णोपशमना। यानी सभी कर्ण नहीं हो रहे, कुछ उपशमित है, जैसे दर्शनों के उपशमने वो निधत्ति निकाचना वो रुक जाते मिट जाते, बाकी कुछ कर्म तो चल रहे ना। तात्पर्य है आगे बता रहे, दर्शन मुनि की उपशमना होने पर की बात है, अपकर्षण करण और प्रकृति संक्रमण करण अनुपशांत रहते हैं, यानी उसका अपकर्षण होना पर प्रकृति रूप संक्रमण होना वो चल रहा है, वो अनुपशांत है, उपशांत नहीं है, तथा शेष कर्ण उपशांत हो जाते हैं, यह देश कर्णोपशमना है। अथवा उपशम श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अप्रशस्त उपशमनाकरण, निधत्तीकरण और निकाचनाकरण, ये तीन करण अपने अपने स्वरूप से विनष्ट हो जाते हैं। उन्हें देखा ना, ये जो निधत्ति निकाचना है आठवें तक ही, यानी अपूर्वकरण तक ही, अनिवृत्तिकरण के बाद वो नहीं रहते। अर्थात संसार अवस्था में उदय संक्रम उत्कर्षण और अपकर्षण रूप से जो उपशांत थे, इस समय पुनः उत्कर्षण आदि क्रिया का होना, इसका नाम देश कर्णोपशमना है। संसार अवस्था में इनका उदय नहीं हो रहा था, संक्रमण नहीं हो रहा था, उत्कर्षण नहीं हो रहा था, अपकर्षण नहीं हो रहा था, अब कहते यहाँ वो सब शुरू हो जाएगा। पहले उपशांत थे, अब उसका क्रिया हो, उसकी क्रिया हो रहा है, हो रही है, इसका नाम है देश कर्णोपशमना। अथवा नपुसक वेद के प्रदेशों का उपशमन करते हुए जब तक सर्वोपशम नहीं होता, तब तक उसका नाम देश कर्णोपशमना है। यानी उपशम कार्य चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, अधूरा हुआ है, तो उसको देश कर्णोपशमना, यह अलग अलग तीन प्रकार से समझाया। इसी प्रकार आगे भी स्त्रीवेद आदि के विषय में समझना चाहिए, किंतु काप रहा है ना क्या, कपरा चाहिए ना, कषाय प्रावृत चूर्णी के अनुसार कांका का अर्थ क्या है। वीरसेन स्वामी ने इसे स्वीकार नहीं किया है। का लिखा, क लिखा, कषाय प्रावृत चूर्णी के अनुसार, क्या श्वेतांबर चूर्णी होगी कुछ, पता नहीं जो कुछ है, पर वो लिख देना वैसे। तथा सब कर्णों की उपशमना को सर्वोपशमना कहते हैं। तात्पर्य है अप्रशस्त उपशमना आदि आठ कर्णों का अपनी अपनी क्रिया को छोड़कर उनका प्रशस्त उपशमना द्वारा उपशांत होना सर्व कर्णोपशमना है। यानी अभी जब वेद सम्यक तो था तब मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का क्या था, अप्रशस्त उपशमना थी, वह प्रशस्त उपशमना रुक कर प्रशस्त उपशमना हो जाएगी। तो अप्रशस्त उपशमना का उपशम हो गया वो रुक गई। ये वही बात यहाँ पर प्रस्तावना में जो हम वहाँ पढ़ते हुए थे, इसलिए हमने ये पहले नहीं पढ़े थे। श्वेतांबरों की वहाँ बीच बीच में उन्होंने बात करी। चलो ये पढ़ना है क्या आगे, क्योंकि इसमें तो सर्वत्र श्वेतांबरों के साथ ही कंपेयर कर दिए
ऐसे, ये कंफ्यूज हो जाएंगे,
ये बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। यानी इसमें रेफरेंसेस वगैरह ही देखें। अभी हम आगे अपने पृष्ठ संख्या जो ओरिजिनल पांच पर आए थे, चार पर थे। नीचे से दूसरा पैराग्राफ 10 नंबर का। अन्य व्याख्यानाचार्यों का अभिप्राय है कि इस प्रकार की देश कर्णोपशमना कौन सा है, किन्हीं कर्मों का परिमित कर्म प्रदेशों में ही उपशांतपना, उसको देशकरण कहा था। तो कोई व्याख्यानाचार्य कहते हैं तो ऐसी जो यहाँ परिभाषा बनाई है वह विवक्षित नहीं है, क्योंकि इसका अकर्णोपशमना में अंतर्भाव किया गया है। अतः देश कर्णोपशमना का अन्य प्रकार से अर्थ कहना चाहिए, यथा ये कौन सा अर्थ करना चाहिए वो बात यहाँ बता रहे, क्योंकि कुछ कर्म उपशांत रहना तो उसको तो हमने अप्रशस्त उपशमना में लिया था ऊपर, और उसी को अकर्णोपशमना कहा था। तो ये बताते 11 नंबर का पॉइंट है, दर्शन मुनि का उपशम होने पर उदयादि कर्णों में से कोई कर्ण उपशांत हो जाते हैं और कोई कर्ण अनुपशांत रहते हैं। उदय नहीं होगा, उसकी उदीर्णा होकर भी उदीर्णा उदय नहीं होगा, संक्रमण होगा कि नहीं होगा,
होगा
ना, मिथ्यात्व में से समय प्रकृति है, समय मिथ्यात्व तो हर समय चल रहे हैं, तो कुछ का उपशम चलेगा कुछ का नहीं होगा,
वो
प्रशस्त उपशम भी चलेगा वेद समय के काल में। तो कहते हैं यहाँ तो उपशम की बात चल रही है, दर्शन मुनि का उपशम होने पर उदयादि कर्णों में से कोई कर्ण उपशांत हो जाते हैं और कोई कर्ण अनुपशांत रहते हैं, इसलिए यह देश कर्णोपशमना कहते हैं। यानी कर्ण के लिए देश शब्द लगाना, कर्मों के परमाणुओं के लिए नहीं, ये इनका कहना है। इसका तात्पर्य यह है कि दर्शन मुनि कर्म संबंधी अप्रशस्त उपशमना निधत्तीकरण, निकाचनाकरण, बंधनकरण, उत्कर्षणकरण, उदीर्णाकरण और उदयकरण, इस प्रकार ये सात करण उपशांत हो जाते हैं, तथा अपकर्षण करण और परप्रकृति संक्रमण करण ये दो करण अनुपशांत रहते हैं। इसलिए किन्हीं करणों के उपशम होने से और किन्हीं करणों के अनुपशम रहने से इसकी देश करणोपशमना संज्ञा है। हम जब देखते हैं दर्शन मुनि का उपशम हुआ तो क्या क्या रह गया अभी उसका
अपकर्षण उपशम,
तो ये अप्रशस्त उपशमना नहीं होगी, निदत्तीकरण निकाच करना करण भी निकल जाए। तो क्या क्या बंद भी नहीं होगा, बंद नहीं होगा तो उत्कर्षण भी नहीं होगा, उदीर्णा भी नहीं होगी, उदय भी नहीं होगा, तो ये सात करण उपशांत हो जाते हैं। तो क्या रह जाता है, अपकर्षण और परप्रकृति संक्रमण, ये चलते रहते हैं। अभी आगे का, अथवा उपशम श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अप्रशस्त उपशमनाकरण, निधत्तीकरण और निकाचनाकरण, ये तीनों ही करण अपने अपने स्वरूप से विनष्ट हो जाते हैं। इसके विनाश का अर्थ है, यानी करणों का विनाश होना, यानी क्या होना कि संसार अवस्था में उदय संक्रमण उत्कर्षण और अपकर्षण रूप से जो कर्म उपशांत हुए, इस समय उन कर्मों की पुनः उत्कर्षण आदि क्रिया का किया जाना संभव है। क्या कहते हैं, उदय रूप से जो उपशांत हुए, यानी जिनका उदय नहीं हो रहा था, संक्रमण जिनका नहीं हो रहा था, उत्कर्षण अपकर्षण जिन परमाणुओं में नहीं हो रहा था, तो उन कर्मों के उत्कर्षण आदि क्रिया का शुरू हो जाते हैं। ऐसा होने पर उपशम का अभाव हो जाता है। उपशम करण का अभाव हुआ ना, पहले उपशमित रहते थे कुछ परमाणु, अपनी जगह छोड़ते नहीं थे, ना उनमें वो अपकर्षण होता ना उत्कर्षण होता ना कुछ हो रहा था। ऐसा कहने पर आचार्य कहते हैं, पहले संसार अवस्था में अप्रशस्त कर्णोपशामना के द्वारा जो कर्म उपशांत हुए, पुनः तीन कर्णों के द्वारा ग्रहण किए गए उस प्रकार से परिणत उन कर्म प्रदेशों का उस रूप से जो विनाश होता है, यही यहाँ देश कर्णोपशामना कही जाती है। क्योंकि तीन कर्णों का, ये कौन से तीन कर्ण है, नहीं
अच्छा ये ऊपर कह गए
उपशामना निधत्ति और
निकाचित कर,
तीन करणों का यानी उपशामना या प्रशस्त उपशामना उपशामना करण कहें, निधत्तीकरण और निकाचना करण, तो कहते तीन करणों का अपने रूप से विनाश, यानी अभी उसमें निधत्तीपना नहीं रहेगा। यहाँ पर देश कर्णोपशामना रूप से विवक्षित है, इसलिए अप्रशस्त उपशामना आदि तीन करणों का लिखा है ना, ऊपर जो तीन करणों का शब्द आया था वो उसका अर्थ क्या है, अप्रशस्त उपशामना आदि तीन करणों का विनाश होने पर, करणों का विनाश हुआ, ये करण क्या होते थे तो उत्कर्षण आदि नहीं होते थे, तो करण का उपशान हुआ या विनाश हुआ उसका तो वो चालू हो गए। तो कहते ऐसा होने पर अपकर्षण उत्कर्षण आदि क्रियाओं का संभव होना ही अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय में देश कर्णोपशामना संज्ञा को प्राप्त होता है, यह यहाँ भावार्थ है। अथवा ये दूसरा, नपुसक वेद के प्रदेश पुंज का उपशम करने वाले के जब तक वह सर्वोपशम को नहीं प्राप्त होता, तब तक देश कर्णोपशामना कही जाती है, क्योंकि वो फाली रूप से होती है, एक अंतर्मूर्त में पहली फाली दूसरी फाली तीसरी फाली, तो वो असंख्यात गुणा क्रम से वो फाली रूप से संक्रमित यानी अन्य रूप से होकर विनष्ट हो जाता है,
यहाँ
उपशमित हो जाता है।
क्या फाली रूप जो उपशमाया जाता है उसकी बात है कि जो करण है उसमें से कुछ होते कुछ नहीं होते उसको देश करण कहते हैं,
अभी अथवा लिया ना, जो कुछ होते हैं वो 13 नंबर में बताए।
हाँ।
अब हम 14वां नंबर का पॉइंट पढ़ लें। 14वें नंबर के पॉइंट में अथवा कहकर और अलग बात बताए कि नपुसक वेद का प्रदेश पुंज का उपशम शुरू हुआ है। जब तक सर्वोपशम को प्राप्त नहीं होता उसका अर्थ क्या है? सभी परमाणु जब तक उपशमित नहीं हुए हैं। तो यहाँ संक्रमण की बात नहीं, उपशम की ले रहे, यानी कुछ का उपशम हो रहा है, कुछ का संक्रमण भी चल रहा है। संक्रमण को छोड़ दो अभी, तो पहली फाली से उपशमित हुई, दूसरी फाली उपशमित हुई, तीसरी फाली उपशमित हुई, असंख्यात गुणा क्रम से उपशमने का कार्य चलेगा। तो जब तक पूर्ण नहीं हुआ, पार्शल हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? देश कर्णोपशमना। कर्णोपशमना क्यों कही? क्योंकि कर्ण परिणामों के द्वारा हो रही है, यानी अनिवृत्ति कर्ण परिणामों में ये बात हो रही है, 9वें गुण स्थान में हो रही है। और देश शब्द क्यों लगाया है? ये जो उपशमना हुए वो पार्शल हुए, यानी देश शब्द कर्ण को लगाएंगे तो कर्णों में से कुछ कर्ण ऐसा अर्थ होता है, और उपशमना के लिए देश शब्द लगाएंगे तो कुछ परमाणुओं का हुआ है, बाकी बाकी है, अभी चल रहा है, यानी उपशम करने का कार्य चल रहा है, अभी अधूरा हुआ है, तो उसको देश कर्ण उपशमना कहेंगे। अथवा फिर दूसरा और अर्थ, नपुसक वेद के उपशांत होने पर और चारित्र और शेष चारित्र मुनि कर्मों के अनुपशांत होने पर यह देश कर्णोपशमना होती है, यानी कुछ कर्मों का उपशम हुआ, कुछ का नहीं हुआ। क्योंकि कर्ण परिणामों के द्वारा विवक्षित कर्म पुंज का ही वहां उपशम पना देखा जाता है। जयधवलाकार कहते हैं यहाँ पर तो पूर्वोक्त अर्थ का ही प्रधान रूप से अवलंबन करना चाहिए, क्योंकि अनंतर पूर्व जो कुछ कहा गया है वह सब सर्व कर्णोपशमना के भेद रूप है, अतः उसका उसी में अंतर्भाव स्वीकार किया गया। पहला जो अर्थ था अनंतर पूर्व, अभी जो बताया वो सर्वोपशमना का ही भेद है। अभी जो नपुसक वेद की बात की है वो सर्वोपशमना का ही भेद है।
हाँ।
क्रम से चल रही है वो सर्वोपशमना, परंतु पूर्व में जो कुछ कर्ण वगैरह लिया है या कुछ कर्म है, ऐसे दो अर्थ पहले भी कर चुके। अन्यथा प्रशस्त उपशमना के भेद रूप इसका अप्रशस्त उपशमना स्वरूप देश कर्णोपशमना में अंतर्भाव स्वीकार करने पर विरोध आता है, यानी प्रशस्त उपशमना हो रही है और उसको अगर हम देश कर्णोपशमना कहेंगे तो देश कर्णोपशमना तो अप्रशस्त उपशमना में इंक्लूड हो जाती है, वो प्रशस्त उपशमना का भेद नहीं है, यानी अथवा कहकर उन्होंने प्रतिपादन किया और वो यहाँ घटित नहीं होता, ये भी बताता है विशेषार्थ। यहाँ कर्णोपशमना के देश कर्णोपशमना और सर्व कर्णोपशमना ऐसे दो भेद करके उनके स्वरूप पर विशेष प्रकाश डाला गया है। संसार अवस्था में अप्रशस्त उपशमना, निधत्ति और निकाचना आदि कर्णों के माध्यम से जो परिमित कर्म पुंज का उपशमना रूप होकर उदय के अयोग्य रहना वह देश कर्णोपशमना है। अब यहाँ कितनी स्पष्ट बात की है, क्या कहते हैं? संसार अवस्था में, यानी जब तक वो अधकरण आदि तीन कर्ण परिणाम नहीं हुए, जीव अनिवृत्ति करण में नहीं गया है और तब तक वो अप्रशस्त उपशमना चलती है, क्या पूरे कर्मों में चलती है? तो कुछ कर्म प्रदेशों में चलती है, क्योंकि कुछ का तो उदय तो चल ही रहा है ना।
हाँ।
लिमिटेड, परिमित, यानी जिनका उदय हो रहा है उनकी बात नहीं, जो ऊपर अपने निषेकों में पड़े हैं, जिनका उदय अभी दूर है वो बात ले, उसकी उदीर्ण होकर उदय नहीं हो रहा। एक बात, कैसे परमाणु कुछ ऐसे है कि वो अपनी जगह छोड़ते नहीं, उनका अपकर्षण उत्कर्षण नहीं चल रहा है, और कितने परमाणु नीचे भी आते ऊपर भी चले जाते हैं, वो तो घूमना चलता रहता है, यानी उनके अपकर्षण उत्कर्षण आदि होते रहते, तो कुछ परमाणु अपनी जगह नहीं छोड़ते, तो उसको निधत्ति निकाचित में ले लेंगे। यानी ये जो कहते हैं ना, कोई निधत्ति कर्म बांधेगा, निकाचित कर्म बांधेगा, ऐसा नहीं, प्रत्येक कर्म में कुछ परमाणु अपनी जगह फिक्स होने पर रहेंगे, उसी को निधत्ति निकाचित कहेंगे। उसमें अपकर्षण की जो योग्यता है वो अनिवृत्तिकरण परिणाम से आएगी, तब तक तो ऐसे रहेंगे। ये फिर पढ़ती हूँ मैं, विशेषाद की सेकंड लाइन। संसार अवस्था में अप्रशस्त उपशमना निधत्ति और निकाचना आदि कर्णों के माध्यम से जो परिमित कर्म पुंज का उपशमना रूप होकर उदय के अयोग्य रहना, वह देश कर्णोपशमना है। और दर्शन मुनि की अपेक्षा अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अप्रशस्त उपशमना निधत्ति और निकाचना की विच्छित्ति होने के बाद दर्शन मुनि की अपेक्षा ली। अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा दर्शन मुनि के पूरे कर्म पुंज को अंतर्मूर्त काल के लिए उदय के अयोग्य करना सर्वोपशमना है, या चारित्र मुनि की अपेक्षा अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अप्रशस्त उपशमना निधत्ति और निकाचना की विच्छित्ति होकर अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय द्वारा चारित्र मुनि के पूरे कर्म पुंज को अंतर्मूर्त काल के लिए उदयादि के अयोग्य करना सर्वोपशमना है।
सो दर्शन मुनि का जो कर्ण परिणाम की बात की है वो गुणस्थान की बात नहीं है, वो प्रथम अक्षर में जो कर्ण परिणाम
बिल्कुल वहाँ निवृत्तिकरण को लेना, जो मिथ्या तो अवस्था में ही घटित हो रहा है अभी भी, तो वहाँ पर भी ये उपशमना का कार्य चल रहा है, परंतु उन प्रकृतियों में घटित होगा, और यहाँ जो श्रेणी में होगा वो चारित्र मुनि के उस पर घटित होगा। अलग अलग कर्ण परिणाम अलग अलग प्रकृतियों पर काम करते हैं, ये तो हमने पहले से भी देख लिया है। यहाँ दर्शन मुनि का उपशम होने पर भी, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, उसमें संक्रमण करण और अपकर्षण करण की प्रवृत्ति होने पर भी पूरा कर्म पुंज विवक्षित समय के लिए उदय के अयोग्य बना रहता है, इसलिए इसे सर्वोपशमना रूप मानने में कोई बाधा नहीं आती। यह देश कर्णोपशमना और सर्व कर्णोपशमना, इन दोनों में भेद है। किंतु कुछ आचार्य देश कर्णोपशमना की अन्यथा प्ररूपणा करते हुए कहते हैं कि यद्यपि अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अप्रशस्त उपशमना निधत्ति और निकाचना करण की विच्छित्ति हो जाती है, और ऐसा होने पर जो कर्मपुंज पहले उक्त रूप से परिणत था वह उस रूप से परिणत नहीं रहा, यही यहाँ देश कर्णोपशमना है। इस विवक्षा में उक्त अप्रशस्त तीन कर्णों की विच्छित्ति ही, अप्रशस्त तीन कर्ण नहीं है वैसे, उसको अप्रशस्त कर्ण कहा, यानी प्रशस्त अप्रशस्त भाव ने वो कर्णों को ही अप्रशस्त कर्ण कहा। कौन से वो अप्रशस्त? उपशम, निधत्ति और निकाचना। तो इन तीन कर्णों की विच्छित्ति ही देश कर्णोपशमना है। इससे अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय में विवक्षित कर्मपुंज की यथासंभव अपकर्षण और उत्कर्षण आदि क्रिया संभव हो जाती है, अथवा नपुसक वेद का उपशम करते समय जब तक उसका पूरा उपशम नहीं होता तब तक उसकी अपेक्षा देश कर्णोपशमना जाननी चाहिए, अथवा नपुसक वेद का उपशम हो जाने पर आगे जब तक क्रम से शेष चारित्र मुनि का पूरी तरह से उपशम नहीं होता तब तक उपशम के जितने प्रकार बनते हैं वे सब देश कर्णोपशमना है। किंतु अन्य आचार्यों का यह कथन प्रकृति में इसलिए ग्राह्य नहीं है क्योंकि इससे प्रशस्त उपशमना की क्रमिक उपशमना को अप्रशस्त उपशमना मानने का प्रसंग प्राप्त होता है। यानी जब तक थोड़ी उपशमना हुई बाकी है उसको अगर हम अप्रशस्त मानेंगे तो गड़बड़ होगी। वो प्रशस्त उपशमना का ही कार्य चल रहा है, उसको अप्रशस्त नहीं कह सकते। देशकरण नहीं कह सकते। अतः सर्वोपशमना से देशकरणोपशमना को भिन्न ही जानना चाहिए। यानी देशकरणोपशमना या सर्व कर्मोपशमना का या सर्व कर्णोपशमना का भेद नहीं है, ये बात बताना चाहते हैं। अब सर्व कर्णोपशमना का अर्थ कहते हैं। यथा सब कर्णों की उपशमना सर्व कर्णोपशमना है। अप्रशस्त उपशमना, निधत्त, निकाचना आदि भेद वाले आठ कर्णों का अपनी अपनी क्रिया को छोड़कर प्रशस्त उपशमना के द्वारा जो सर्वोपशम होता है वह सर्वोपशमना है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका: यदि ऐसा है तो सर्वकर्णोपशमना के द्वारा अपकर्षण आदि क्रियाओं का अभाव होने पर वहां अप्रशस्त उपशमना, निधत्त और निकाचन कर्णों का अस्तित्व प्राप्त होता है, क्योंकि अपकर्षण आदि क्रिया से रहित उसकी उस प्रकार से प्राप्ति बन जाती है। और ऐसी अवस्था में यहाँ पर उनका उपशांतपना कैसे संभव है? तो आदि आठ कर्णों का उपशम हो जाता है, यानी अपकर्षण आदि भी क्रिया रुक जाती है, तो कहे ये शंका करके शंका है, तो उसी को निधत्ति कहो ना, ये उसका कहना है। समाधान: यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अप्रशस्त उपशमना आदि की संतान अनिवृत्ति करण में प्रवेश करने के प्रथम समय में ही अत्यंत विच्छिन्न हो जाती है। उच्छिन्न लिखा है, उसको विशेष उच्छिन्न, उसको विच्छिन्न कहेंगे। इसलिए ऊपर उनकी प्रवृत्ति संभव न होने से वहां उनके उपशांत पने की सिद्धि हो जाती है। जरूरत नहीं लगती है, ऊपर क्या लिखा है। अच्छंत उच्छिन्न संतानाणम, उच्छिन्न ही लिखा है, और वो व्युच्छिन्न हम कहते हैं, वो वी प्लस उ व्यू हो जाता है, विशेष उच्छिन्न। ये उच्छिन्न कोई गलती नहीं है। यदि कहा जाए कि सर्वोपशमना में अपकर्षण आदि का विरह हो जाता है, इसलिए यह अप्रशस्त उपशमना करण आदि संज्ञा के योग्य है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि संसार अवस्था में अपकर्षण आदि की विषय प्रवृत्ति में कितने ही कर्म परमाणुओं का बाह्य और अंतरंग कारणों के वश से जो अपकर्षण आदि पने से विमुख होना है। क्या कहना है? ये निधति निकाचना किसको क्या है? तो कुछ कर्म परमाणुओं का बाह्य कारण और अंतरंग कारणों के वश से जो अपकर्षण आदि पने से विमुख होना है, उसे अप्रशस्त उपशमनाकरण आदि संज्ञा देना योग्य है, आदि यानी निधति निकाचना वगैरह कहना योग्य है, किंतु वह अत्यंत विच्छेद का विषय नहीं होता। यह विच्छेद का, विच्छेद नहीं का, ऐसा यहाँ स्वीकार किया गया। इसलिए सर्वकर्णोपशमना इस प्रकार की है, यह सब निर्दोष है। फिर इसका भी विशेषार्थ बताते हैं। यहाँ सर्वोपशमना के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए जो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अप्रशस्त उपशमना आदि की विच्छित्ति हो जाने के बाद, यहाँ विच्छित्ति शब्द आया, विशेष विच्छित्ति, चारित्र मुनि की विवक्षा में 21 प्रकृतियों संबंधी सब करणों की प्रशस्त उपशमना द्वारा उपशमना होती है वह सर्व करणों उपशमना है। क्या कहते हैं? अनिवृत्तिकरण के पहले ही समय में, पहले समय में अप्रशस्त उपशमना वगैरह की विच्छित्ति होती है। और चारित्र मुनि की उपशमना कब होती है?
11वें गुण स्थान के
शुरू हो जाती है ना प्रशस्त उपशमना। संख्यात बहुभाग जाने पर एक एक की शुरू हो जाएगी, पूर्ण होने में तो 11वां गुण स्थान आएगा।
शुरू कब ही होती है?
परंतु अप्रशस्त उपशमना का यही विच्छेद हो गया, निदति निकाटना सबका। ये 9वें के पहले ही समय में तीन करण नष्ट हो गए। कौन से? अप्रशस्त उपशमना, निदति और निकाटना। प्रश्न यही था कि सभी प्रकार का उपशम तो ऊपर होने ही वाला है, यानी वहाँ निदत्तिपना है ऐसा कहो ना, वो नष्ट हुआ ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहते हैं 9वें गुणस्थान के पहले समय से ही निदत्तिपना नष्ट हुआ। ये किसको कहते हैं निदत्ति निकाचना और अप्रशस्त उपशम? तो जो निषेक रचना है उसमें कितने ही परमाणु अपकर्षित होते हैं, फिर दोबारा उपकर्षित भी होते हैं, कितने ही डायरेक्ट कोई अपकर्षित होकर निकल भी जाएगा, ये तो ऊपर नीचे होना, संक्रमण होना, ये सब चलता रहता है। कुछ परमाणु अपनी जगह छोड़ते ही नहीं है, अपने जैसे है वैसे बना रहते, उसमें अपकर्षण वगैरह नहीं होता है, तो उसको कहेंगे वो निदति निकाचित करना। अब अनिवृत्तिकरण परिणाम ऐसे है कि सब में वो अपकर्षण आदि होने की योग्यता सब में बनी जाए, जो निदत्ति रूप से हो रहे थे वो भी अभी अपकर्षित होने लगे, ये उसका अर्थ है।
हाँ,
उदयन नहीं होना, संक्रमण निकाचित में उत्कर्षण उसको निकाचित कहने। परंतु ये कोई कर्म है निदत्ति और कर्म कोई किसी कर्म का नाम निकाचित नहीं है, ऐसा ऐसे समझ है, ऐसे कथन में भी आता है, ऐसे डराते हैं निदत्ति निकाचित कर्म का बंद होगा। अरे जो बंद रहे उसमें से कुछ परमाणु निदत्ति निकाचित रूप से रहते हैं और तो संसार अवस्था में होते ही होते हैं। उनका स्थिति कांडक होता है। परंतु स्थिति कांडक होकर भी वो नीचे के निषेकों में आ मिलेंगे, वहां पर वो सर्वथा ऐसे उदीर न होकर उदय में नहीं आएंगे। या जिनका स्थिति कांडक होता है उन परमाणुओं को हम निदति निकाचना वाले नहीं कहेंगे। हाँ, पर वो बीच वाले हो गए ना, हमने देखा पहले, एक बार देखी थी हमने, कुछ प्रमाण उन्होंने बताया था, इतने वो जो अंत कोड़ा कोड़ी या जो कुछ प्रमाण है, यानी उतनी तो स्थिति रहेगी ही
रहेगी।
ये जरूरी नहीं कि 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बंदी है तो 70 कोड़ा कोड़ी काल तक वो निषेक बना रही है, कोई जरूरत नहीं। परंतु ये स्थिति विशिष्ट बताई थी, ध्रुव स्थिति ऐसा कुछ नाम दिया था उसकी, तो वहां तक तो परमाणु बने रहेंगे ही रहेंगे।
तो उसमें से भी निदत्ति और निकाचित किस तरह निकल जाता
है? वो तो नीचे निकलने, वो वहां नहीं रहेंगे, नीचे रहेंगे, हम ऐसा ले सकते हैं ना, यानी ऐसे परमाणु वहां रहेंगे। हमने जब ये कहां देखी थी, प्रकृति विभक्ति में देखा, प्रदेश विभक्ति में देखा कि 70 कोड़ा कोड़ी वाला जो अंतिम निषेक था, हो सकता है जब उसका नंबर आया 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद, तो वहाँ एक ही परमाणु था, और ऐसा भी होगा कोई भी परमाणु नहीं बचेगा, परंतु कोई ना कोई परमाणु अवश्य रहेंगे, ऐसी तो स्थिति हमने देखी थी मिनिमम। उसके ऊपर से हो सकता है कि अपकर्षण होकर फिर भी जावे, नीचे के निषेकों में आ मिले, अरे उन्हीं का स्थिति कांडक होता है वो तो। ये जो हम कहते ना प्रायोगिक लब्धि में अंत कोड़ा कोड़ी होता है, ये आपने मेरी कल्पना की बात में कही, क्योंकि प्रकृति विभक्ति में हमने ये बात देखी थी। तो स्थिति स्थिति कांडक घात तो एक इंद्रिय में भी जाके होते हैं, पंच इंद्रिय जो एक इंद्रिय में गए तो स्थिति कांडक घात होता है। तो कांडक घात होते हैं नीचे तो आते हैं, अपकर्षण तो होता है। तो हो सकता है कि जो ऐसे बीच वाले निषेकों में पड़े हैं, यानी वो किसको कहते, वो इतना क्लियर नहीं हो रहा। अभी ये पढ़ने के बाद कुछ क्लैरिटी होगी तो होगी।
क्या अभी तक जो पढ़ा ना उससे से समझने से कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है?
नहीं नहीं, थोड़ा होने दो ना कंफ्यूजन, तो फिर आगे क्या समझा रहे वो तो समझ में आएगा। यानी कंफ्यूजन नहीं, कुछ प्रश्न उठ रहे हैं यहाँ जो अनुत्तरी से
एकदम क्लैरिटी
नहीं। यहाँ विषय शुरू हुआ है, विषय यहाँ शुरू किया उन्होंने, तो प्रश्न उठना तो स्वाभाविक ही है। यहाँ तो ये बात हो रही है, प्रश्न क्या पूछा गया था कि सर्व उपशामना होती है चारित्रमों की। सर्व उपशामना होती है, उसमें अपकर्षण नहीं होगा, उदय नहीं होगा, संक्रमण में कुछ नहीं होगा,
सर्व सभी कारणों का,
तो उसी को निधत्ति निकाचना कहते हैं ना। तो ये कहते हैं यहाँ पर प्रथम समय में अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करते ही प्रथम समय में निधत्तिपना नहीं रहता, निकाचितपना नहीं रहता, अप्रशस्त उपशमना नहीं रहती।
तो क्या सर्व उपशमना
वो नष्ट हो जाते?
तो सर्व उपशमना जब भी अनिवृत्तिकरण से सूक्ष्म सांप्रदायिकता थी ले लिए,
नहीं नहीं वो सर्व उपशमना 11वें तक रहेगी ना, परंतु वो कार्य शुरू हो गया कि नहीं उसका? संपूर्ण उपशमना कब कहेंगे? 11वें में कहेंगे। और उसका प्रोसेस कब चल रहा है? अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्रदाय में चल रहा है। यहाँ अभी लिखा है ना पहले समय में, हाँ प्रथम समय ने अपूर्वकरण तक ही रहते हैं, निकाचित निकाचनपना अपूर्वकरण तक ही है, आगे नहीं है। यहाँ क्लैरिटी होती कि पहले समय में नष्ट हुआ है और आगे चलकर सर्वोपशमना होती है, परंतु वो निधत्तिपने के कारण नहीं रहे।
हाँ,
वो करण अनुपशांत तो हो ही गया, बंद हो गया, मिट गया है, नाश हो गया, उसका अभाव हो गया। विशेषा फिर पढ़ेंगे। यहाँ सर्वोपशमना के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए जो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है, अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अप्रशस्त उपशमना आदि की विच्छित्ति हो जाने के बाद, आदि में तीन लिया, अप्रशस्त उपशमना, निदत्य और निकाचना, तो उनकी विच्छित्ति होना है, उसका अभाव होना, अभी तक वो चल रहे थे, अभी उसका अभाव हुआ। चारित्रमों की विवक्षा में 21 प्रकृतियों संबंधी सब करणों की प्रशस्त उपशमना द्वारा उपशमना होती है। सभी करण मिट जाते हैं, रुक जाते हैं, यानी उसका उदय मिटता है, उसकी उदीर्णा मिटती है, उसका जो कुछ है ये सब मिट गए हैं, वह सर्व कर्णोपशमना है। यद्यपि अनिवृत्तिकरण के पूर्व जो कर्मपुंज, पूरा कर्म नहीं कहा, जो कर्मपुंज अप्रशस्त उपशमना निधत्ति और निकाचना रूप थे, यहाँ इन कर्णों की विच्छित्ति हो जाने पर उन कर्म परमाणुओं का भी अपकर्षण और उत्कर्षण आदि क्रिया प्रारंभ हो जाती है, किंतु 10वें गुणस्थान के अंत तक सभी कर्ण प्रशस्त उपशमना द्वारा उपशांत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, यानी सभी कर्ण रुक जाते हैं, मिट जाते हैं।
तो यहाँ पे भी ये बता रहे हैं वापस कि 11वें सर्वोपशमना नहीं है, सभी करणों की, सभी करण प्रशस्त उपशमना द्वारा उपशांत भाव को प्राप्त हो जाते हैं 10वें के अंत तक,
अंतिम समय में।
और पीछे क्या होता है?
सर्वोपशमना रहती है अंतर्मुहूर्त तक। 11वें में क्या रहेगी? सर्वोपशमना भी हो चुकी है, इसलिए इसकी सर्व कर्णोपशमना यह संज्ञा सार्थक है। दर्शन मुनि की अपेक्षा उसे प्रशस्त करण परिणामों द्वारा उदय के अयोग्य करना मुख्य है। मुख्यता किसकी बताई वहां पर? उदय के अयोग्य करना। चारित्र मुनि में सभी करण रुक गए हैं, दर्शन मुनि में वो संक्रमण करण आदि तो चल रहे हैं पर प्रकृति रूप होकर, या तो उपशम के काल में भी दर्शन मुनि के उपशम के काल में भी मिथ्यात्व में से समय मिथ्यात्व समय प्रकृति तैयार हो रही है, तो वहाँ किसकी प्रधानता ली, उदय नहीं हो रहा है उसकी प्रधानता ली, इसलिए उसको प्रशस्त उपशम नाम दिया है।
दर्शन मुनि की जो सर्वोक सामना है वो चालू होती है अनिवृत्त दृष्टिकोण, ऐसे अनिवृत्तिकरण में चालू हो जाती है।
हाँ, पर उपशमना पूरी कब कहलाएगी, जब दर्शन मुनि ने उपशम
नहीं चालू कब हो गया, निधति निकाती तब
उपशमकरण चालू हो गया, उसके दर्शन मुनि संबंध निधति निकाचन पना नष्ट होगा अनिवृत्तिकरण के पहले समय, वो करण रुक गए हैं।
हाँ, तो वो करण रुक गए तो सभी
करण रुक गए, सभी कहाँ उपशांत हो गए,
पर वहाँ पे तो मुख्यतः तो इसकी बात
तीन करण रुक गए हैं अनिवृत्तिकरण के पहले समय में, उसमें उपशमन का कार्य तो बाद में चालू होगा संख्यात बहुभाग बीत जाने पर, तब जाके उसको उपशमन नाम देंगे। प्रशस्त उपशम कब कहेंगे, जब होगा तब कहेंगे कि होने के पहले कहेंगे, तीन करण परिणाम नष्ट हुए हैं।
अच्छा, तो वहाँ पे ऐसे कहना है कि बाकी के कर्म चल रहे हैं,
बिल्कुल चल रहे हैं, अनिवृत्तिकरण में मिथ्यात्व का उदय है कि नहीं
है,
बंद है कि नहीं
है,
उत्कर्षण चल रहा है कि नहीं तब तक, तो आप ही उत्तर दे रहे हैं।
नहीं,
तो पहले की बात,
पहले की बात चल रही है,
आप ऊपर की बात कर रहे हैं।
नहीं, मैं दर्शनों जी की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूँ।
हाँ बिल्कुल।
हाँ।
तीन करण रुक गए का अर्थ क्या है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे थे।
हाँ, वो अभी छोड़ रहे,
वो छोड़ने लगे, इतनी बात है। निधत्ति निकाचना किस में नष्ट हुई है, दर्शन होने में नष्ट हुई है। विशिष्ट ठिकान का जो करण परिणाम है वो विशिष्ट पर्टिकुलर प्रकृति पर ही असर करेगा, जब अनंतानुबंधी विषय योजना वाले जो कुछ परिणाम है वो अनंतानुबंधी पर ही असर करेंगे, अन्य प्रकृति में कोई वहाँ चेंज नहीं होगी। हाँ, वो विशिष्ट विशुद्धि बढ़ी है इसलिए गुणश्रेणी ज्यादा हो जाएगी, उसकी बात नहीं है, वो तो ज्ञान वर्ण आदि में हुए, किसी कांडक घात वगैरह अन्य कर्मों में भी होते, परंतु जो मुख्य वहाँ जिस प्रकृति की बात है
उसकी कहाँ पे,
जब दर्शन की सपना है तो उसी पर असर होता है, चारित्र मुनि की सपना है तो उसी पर, वो विशिष्ट जो बात है उसी पर होती है, घटित होती है। दर्शन मुनि की अपेक्षा यानी दर्शन मुनि कर्म में उसे प्रशस्त करण परिणामों द्वारा उदय के अयोग्य करना मुख्य है। जब हम कहते दर्शन मुनि की उपशम ना हुई, प्रशस्त उपशम हुआ तो उसका उदय का अभाव हुआ, यही मुख्यता वहाँ दी है। चारित्र मुनि में क्या है, उदय का तो अभाव हुआ ही हुआ है, वो सभी करण भी उसके उपशमित हो गए, यानी वहाँ उसका संक्रमण आदि भी सब रुक गया। दर्शन मुनि में ऐसा नहीं था। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा कर्णोपशामना के दो भेदों का कथन करके वहाँ सर्वप्रथम देश कर्णोपशामना की संज्ञा के भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। देश कर्णोपशामनाए सामनाए हुआ है सामनाए देश कर्णोपशामनाए सामा नहीं चाहिए साम चाहिए पीछे देखना सामनाय हो नहीं हो सकता सामनाय 8 पेज 5 नंबर देश कर्णों व सामनाय पेज नंबर लास्ट वाला जो है 48 वाला है उसमें ये पेज नंबर कहाँ से 48 नीचे के जो नंबर दिए हैं तीन सौ पचहत्तर पेज पर हमने अभी बराबर है मैंने देख लिया यहाँ पर वह नीचे पेज के नीचे 48 नंबर दिया था उन्होंने वहाँ फुट नोट में पांच देखना, पृष्ठ आठ की वहाँ पर बात है। फिर ऊपर देखना पांच नंबर पहले पैराग्राफ में, देश करणो व सामनाए दुवे नामानी, इन्हें हमने करेक्शन किया वो ठीक है। रेफरेंस परिशिष्ट करो। देश कर्णों व सामना दुवे नामानी, देश कर्णों व सामना तीवी अपसत्थ व सामना तीवी। देश कर्णों उपसामना के दो नाम हैं, देश कर्णों उपसामना और अप्रशस्त उपसामना। हाँ, सामना ही चाहिए, तभी तो मुझे ख्याल आया कि वो गलत है। जा सा करणों का सामना साधु जी। हाँ हाँ, अभी आगे बढ़ेंगे हम। यथा संसार के योग्य अप्रशस्त परिणाम निमित्त होने से यह अप्रशस्त उपशामना कही जाती है, यानी वहां अप्रशस्त यानी अशुभ भाव इतना ही नहीं लेना है, संसार के योग्य भाव और यहाँ तो श्रेणी में कहो या उपशम के काल में होने वाले भाव, उसमें डिफरेंस बताना है। बिल्कुल सभी कर्मों में होगी ये जो अप्रशस्त उपशामना है, वो सभी कर्मों में कहलाएगी। जो उदय रूप नहीं वो क्या है?
उपशम ही है।
तो ऐसी उपशामना सभी आठों कर्मों में रहेगी, और जो उपशम भाव वाला जो उपशम समय को उपशम चारित्र है वो दर्शन मुनि में और चारित्र मुनि में होगा। प्रशस्त उपशम
प्रशस्त उपसामना चार आठों कर्म में होगी,
जो उदय रूप नहीं उसको क्या कहेंगे हम?
आयु में नहीं होगी
ऐसा हमने पहले पढ़ा है, आठों ही कर्मों में अप्रशस्त उपसामना तो करना होती है। आयु जो उदय रूप नहीं है ऊपर के निषेकों में है, उन परमाणुओं को क्या कहेंगे? यहाँ किसी कर्म का नाम नहीं है, कुछ परमाणुओं का नाम है। वो अपनी जगह छोड़कर नहीं आ रहे नीचे, क्या कहेंगे उसको?
नहीं, मैं केवल दर्शन और केवल ज्ञानावरण की बात कर रहा था। अच्छा, आठों कर्मों में है पर इसमें नहीं है, इसका मेरा प्रश्न था।
किसमें नहीं है?
केवल दर्शन तो हमेशा उदय में रहता है।
रहने दो ना, सत्ता में भी है कि नहीं कि केवल उदय में ही है? सत्ता में पड़े रहना, उदय में नहीं आना,
उसको प्रश्न।
अप्रशस्त देखो, अभी हम संसार के योग्य अप्रशस्त परिणाम निमित्तक होने से यह अप्रशस्त उपशामना कही जाती है। यह संसार प्रायोग्य अप्रशस्त परिणाम में निमित्तक होती है, यह असिद्ध नहीं है। क्योंकि अति तीव्र संक्लेश के कारण अप्रशस्त उपशामना निधत्त और निकाचना करणों की प्रवृत्ति देखी जाती है। अति तीव्र संक्लेश के कारण
सातवें गुण संसर्ग सभी अति तीव्र परिणाम ही है।
कुछ कर्मों में, कुछ परमाणुओं में ये बात रहती है, सभी नहीं। अनंत परमाणु बंधे हैं, उसमें कुछ परमाणु इस रूप से रह जाते हैं। तथा क्षपक श्रेणी और उपशम श्रेणी में विशुद्ध परिणामों के निमित्त से यह विनाश को प्राप्त हो जाती है। यह इन्हें अप्रशस्त उपशामना निदत्त और निकाचनाकरण की प्रवृत्ति विनाश को प्राप्त होती है, इसलिए इसका अप्रशस्त पने की सिद्धि में प्रतिबंध का अभाव है। प्रतिबंध का अभाव इन्हें सिद्ध हो जाती है। दो बार निगेटिव आया ना, विशुद्ध परिणाम कब कहा? क्षपक श्रेणी और उपशम श्रेणी में। तब तक क्या कहा? अप्रशस्त कहा परिणाम।
कोई मैंने बोला
शुभ भाव को भी उसमें ले लेते, उसकी कोई वैल्यू नहीं जब तक वो ऊपर के गुणस्थानों में नहीं जाता है। इसलिए इस प्रकार की जो अप्रशस्त उपशामना है वही देशकरणोपशामना कही जाती है, क्योंकि उसके उक्त संज्ञा की सिद्धि में प्रतिबंध का अभाव है। विशेषण, संसार अवस्था में जो उपशामना करण होता है, एक तो वह अप्रशस्त परिणामों को निमित्त कर होता है, दूसरे कुछ परिणाम कर्म परमाणु में ही उसका व्यापार होता है। ये कितनी क्लैरिटी हो गई है। इसलिए इसके अप्रशस्त उपशामना या देश कर्णोपशामना ये दोनों नाम सार्थक है। यही रुकेंगे अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सो वाणी मत तन हो सदा देत हो। मयंक भाई।